और फिर इसके बाद अब आगे चलेंगे हम तो पारे के बारे में। ये पारा क्या है? ये पारा आपको मुझे क्या बताता है? पीछे से इसका रब थोड़ा सा ले लेते हैं। पिछले पारे में हमने देखा कि अंबिया कराम की एक किस्से शुरू हो चुके। अल्लाह सुबहाना ताला ने 6 नबियों के किस्से, उनकी 6 कौमों के जिक्र और लिखे 6 बुराइयों का तस्करा है। आज के इस पारे, 9वें पारे के अंदर जो मेन थीम हम लेंगे वो क्या है कि बुराइयाँ हर तरफ फैली हैं। हमने रसूलों के तरीके पे चल के अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना है और माशरे के अंधेरों को दूर करना है। जितना ज़्यादा आपके दिल में ये ख्याल पुख्ता होता जाएगा, अल्लाह ताला आपको उतना मौका देगा। चंद बातें नोट कीजिएगा। जब भी माशरे में बुराइयां फैली, अल्लाह ताला ने वहां कोई रसूल भेजा और रसूलों की दावत फितरत के मुताबिक होती थी। और एक कोड वर्ड इस पूरे पारे के लिए लिखिए, शरीयत फितरत की मुहाफिज होती है। यानी जिस रब ने हमारी फितरत बनाई है ना, उसी ने हमें शरीयत दी है। इनमें क्लैश नहीं है। मतलब देखिए कि सोना हमारे अख्तियार में नहीं है, नींद आती है ना तो सोने में कोई गुनाह नहीं है। कुछ घंटों के बाद भूख लगती है ना, तो अब भूख लगने में कोई गुनाह नहीं है। कोई हदीस दिखा दे कि भूख लगेगी तो जहन्नुम में जाओगे? इंसान धूप में खड़ा होगा तो पसीना आएगा, आपके मेरे बस में नहीं है, तो पसीने आने में कोई इख्तियार नहीं। समझ आ गई बात? यानी आप इसको ऐसे समझिए कि एक कंपनी से आप एक जूसर ब्लेंडर खरीद के लाते हैं। जो भी इसका बॉक्स खोलते हैं ना या उसको अनबॉक्स करते हैं, तो उसके अंदर से एक पेपर निकलता है और उसका नाम है रीड मी बिफोर यूज़। मुझे पढ़ लीजिए यूज़ करने से पहले। बस शरीयत, जिसको वही कह लें, कुरान कह लें, इल्हामी किताब भी कह लें, ये वो बुकलेट है। जालिकल किताबु ला रैब फी हुदल मुत्तकीन। और फितरत वो है जो अल्लाह ने बना दी। तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अम्बिया में से सबसे पहले हजरत नूह को भेजा। इस कौम का जुर्म शिर्क था और शिर्क फितरत से हटी हुई चीज है। कितनी? 360 का एंगल। सबको पता है पूरा यू टर्न कंप्लीट होता है ना एक राउंड में, तो फिर 360 का एंगल बनता है। यानी शिर्क फितरत से इनहराफ है। इसके बाद कौम आद, कौम समूद, इनके अंदर बीच नंबर एक शिर्क, नंबर दो नबी की नाफरमानी और नंबर तीन यादगारें कायम करना और माशरे के अंदर फसाद फैलाना था। फिर इसी कौमों के सिलसिले में कौम लूत, जिनमें जिनसी खराबियां भी थी शिर्क और बिदत के साथ। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम माली बिगाड़ का शिकार हुई, जिससे अब पारा शुरू हो रहा है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कौम मूसा, यानी फिरौन और मूसा का किस्सा, ये सियासी बिगाड़ है। तो गोया के ये सारी बुराइयां शिर्क के अंडे हैं। एक जुमला लिखिए, दुनिया में आपको कोई भी बुराई दिख रही है ना, ये शिर्क का नतीजा है। जहां शिर्क होगा वहां बुराइयों के अंडे बच्चे जरूर होंगे। 6 कौमों में 6 वो बुनियादी बुराइयां थीं जो कौमों के जवाल का बाइस बनती हैं। इन्हीं को खत्म करने के लिए रसूल आए, लेकिन उनकी मुखालफत की गई। पिछला पारा ही देख लीजिए, मार का हक को बातिल बरपा था। और उनको चाहिए क्या था कि ये रसूल अपनी बातें अपने तक रखें, अपने दीन को सिर्फ मस्जिद या मदरसे तक रखें। इसको हमारी तिजारत में क्यों ला रहे हैं? इसको हमारे ड्राइंग रूम में क्यों ला रहे हैं? इसको शादी में क्या काम है? ये ब्याह शादी कमाना, ये तो दुनिया इसमें कुछ तनकीद करते हैं। लिख लीजिए, हर दौर में लोगों को ऐसे दीनदार बिल्कुल बुरे नहीं लगते जो सिर्फ वजीफे बताएं, मुसवाब और जन्नत के दर्जे बताएं, फजाइलुल अमाल बताएं, ख्वास बताएं, खूबियां बताएं, और उसके बाद जो करते का वक्त है जरा गलत चीज भी तो कहते क्या करें, मजबूरी है ना, आप सबको मानना पड़ेगा, और ये है और वो है। ऐसे लोग किसी को बुरे नहीं लगते। लोगों को कौन बुरा लगता है जो कहता है कि इस दीन को जिंदगी में लाओ, इसको ड्राइंग रूम में लाओ, इसको अपने लाइफस्टाइल में लाओ? तो वो लोग जो दीन को लाइफस्टाइल बनाना पसंद नहीं करते, वो कल नबियों के दुश्मन हो जाते थे और आज वो उलमाए हक के दुश्मन हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं मिलता, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा हाई फाई दर्जे नहीं मिलते, इनको कोई सियासी प्रोटोकॉल भी नहीं मिलता। लोग इनसे अमूमन खायफ ही होते हैं। इसी सोच के साथ आइए कौमे शुएब का किस्सा शुरू करते हैं। बहुत कुछ है इस पूरे बारे में। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप ये जुमला सुनेंगे कि शरीयत फितरत की मुहाफिज है और अंबिया कराम इसकी हिफाजत के लिए आए थे। आइए देखते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, सूरत अल आराफ आयत 88 से पारा शुरू हो रहा है। قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا। इनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, ऐ शुएब, हम आपको और जो आपके हमरा ईमान लाने वाले हैं इनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, नोट कीजिए, धमकियां, इल्ला ये कि तुम हमारे मजहब में फिर जाओ। नोट कर लें, लालच, रग़बतें, कि ये बातें करनी छोड़ दो तो हम तुम्हें बहुत सपोर्ट करेंगे, ये छोड़ दोगे तो ये, और ये कहना शुरू कर दो तो हम तुम्हें सर पे उठा लेंगे। जवाब सुनिए, शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे मजहब में आ जाए, गो हम इसको मकरूह ही समझते हो। ये है आलम हक का, हक वाले दीनदार का हमेशा यही जवाब होता है और होना चाहिए कि हमारे एक हाथ में तुम जलता हुआ अंगारा भी रख दो तो हम फिर भी कभी इस दीन से नहीं पलटेंगे। और अल्लाह के नबी की अहादीस इससे बहुत ज़्यादा हमें रग़बत दिलाती हैं कि एक वक्त आएगा कि दीन पे अमल करना हाथ में जलते हुए अंगारे को लेने के बराबर होगा। और इसी तरह से दूसरी बातें, और अगर बिलफर्ज हम तुम्हारी बात मान लें, कदिफ तरईना अल्लाही कज़िबा, हम तो अल्लाह ताला पर बहुत बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाएं इसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमको इससे निजात दी है, और हमसे मुमकिन नहीं कि तुम्हारे मजहब में फिर आ जाएं। लेकिन हाँ ये कि अल्लाह ताला ही ने जो हमारा मालिक है मुकद्दर किया हो। हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहीत है, हम अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, इसको हाईलाइट कीजिए, जब सारी बात बताने समझाने के बावजूद कोई आपकी बात ना माने तो उससे जुदाई कैसे अख्तियार कीजिए। रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक वअंत खैरुल फातिहीन। हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के मुवाफिक फैसला कर दे, तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। यानी फिर मजबूरियों के नाम पर वहीं ना पड़े रहो, फिर क्या करे, दुनिया भी तो रखनी पड़ती है, बल्कि फिर ऐलाने बरात कर दो। और इनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की राह पर चलोगे तो बेशक बड़ा नुकसान उठाओगे। नोट कीजिए, डरा रहे हैं। आज नहीं लोग कहते ये मौलवियों की बातें मान के भूखा रहना, ये आज के दौर में कोई भला रिश्वत के बाहर काम चलता है, और लो बेटी हिजाब कर रही है तो इसका कोई रिश्ता आएगा। यानी लोग दीन पे अमल करने वालों को नाकाम ना मुराद समझते हैं और दूसरों को ये कह कह के रोकते हैं कि देखो सोच के दीन पे आना, फिर आप जो भी नुकसान होंगे उनकी तुम खुद जिम्मेदार हो जाओगी। अल्लाह ताला इनकी ये सारी बातें सुन रहे थे। फअखज़तहुमुर्रजफा, बस इनको जल्दले ने आप पकड़ा, सब अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकजीब की थी इनकी हालत ये हो गई जैसे इन घरों में कभी बसे ही ना थे। देखिए अल्लाह ने उनको नसीह मनसीह कर दिया। जिन्होंने शुएब की तकजीब की वो ही खसारे में पड़ गए। इस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम इनसे मुंह मोड़ कर चले गए और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, इसमें ना जरा नबी के उस दर्द को महसूस कीजिए जो हमारे अपने नबी और पिछले अंबिया कराम में आपको कॉमन दिखेगा, और उनकी ये कैफियत आज हमें अपने अंदर लानी है। फतवल्लाहु वकाल या कौमी लकद अबलगतुकुम रिसालाती रब्बी, ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकाम पहुंचा दिए थे और मैंने तो तुम्हारी खैर ख्वाही की, फिर मैं इन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं। देखिए कह तो ये रहे हैं कि रंज क्यों करूं, और एक एक लफ्ज बता रहा है कि दिल रंज से फटा जा रहा है। फकीफ आसा अला कौमिन काफिरीन, इससे पता चलता है कि अंबिया कराम अपनी कौमों से कितनी मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस नबी के किस्से के बाद आपको मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दिया, और अब ओवरऑल एक अल्लाह का कानून है, और वो क्या, वमार सल नफी करियत मिन नबीश, और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहां के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ में ना पकड़ा हो ताकि वो गिड़गिड़ाएं। नोट कर लीजिए, तो सख्तियां और आजमाइशें क्यों आती हैं, ताकि हम अंदर से टूट जाए, हमें अपने बड़े होने का एहसास ना हो। सुम्मा बदलना मकाना सैयतिल हसना, फिर हमने इस बदहाली की जगह खुशहाली बदल दी, यहाँ तक कि इनको खूब तरक्की हुई और कहने लगे कि हमारे आबाओ अजदाद को भी तंगी और राहत पेश आई थी, तो हमने इनको अचानक पकड़ लिया और इनको खबर भी न हुई। तो कौमे शुएब का मसला क्या था कि हलाल पे कहाँ गुजारा होता है, डंडी मारते थे, नाप तोल में कमी थी। उनका ख्याल था चोरी के बगैर कैसे काम हो, हाथ की सफाई के बगैर कैसे काम होगा। अल्लाह ताला कहते आओ मैं तुम्हें बताऊं रिस्क की कुंजियां। अगली आयत 96 को नोट कर लीजिए, वलो अन्नाहलल कुरा मन हुवत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और जमीन की बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने तकजीब की तो हमने इनके अमाल की वजह से इनको पकड़ लिया। क्या फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए कि इन पर हमारा अजाब शब के वक्त आ पड़े, जिस वक्त वो सोते हों? और क्या इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेखबर हो गए हैं कि इन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ पड़े, जिस वक्त के वो अपने खेलों में मशहूल हों? क्या बस वो अल्लाह की पकड़ से बेफिक्र हो गए? बस अल्लाह की पकड़ से सिवाय इनके, जिनकी शामत ही आ गई हो, कोई बेफिक्र नहीं होता? अपने आप से पूछिए कहीं मैं बेफिक्र तो नहीं हूँ? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको इंसान अपने लिए समझता है, दूसरे को तो उसकी कानो कान खबर भी नहीं होती। अवलम यह दिल्लिन, आयत नंबर 100। और क्या इन लोगों को जो जमीन के वारिस हुए वहाँ के लोगों की हलाकत के बाद जो वाकयात में मजकूर हैं, ये बात नहीं बतलाई कि अगर हम चाहें तो इनके जरायम के सबब इनको हलाक कर डालें? ये भी नोट कीजिए, बंदे के गुनाह उसको हलाक कर देते हैं और हम इनके दिलों पर मोहर लगा दें बस वो ना सुन सके। इन बस्तियों के कुछ किस्से हम आपसे बयान कर रहे हैं और इन सब के पास इनके पैगंबर मौजजात लेकर आए, फिर जिस चीज़ को उन्होंने शुरू में झूठा कह दिया, ये बात ना हुई कि फिर इसको मान लेते। अना लिख लीजिए, एक दफा ना पड़ जाए ना तो हाँ मैं नहीं बदलती। आज हमारा भी कल्चर ऐसा ही है, दिल मान रहा होता है कि मैंने गलत किया था, दिल मान रहा था कि मेरा रवैया ठीक नहीं था उस वक्त, जाती मेरी थी, लेकिन आई एम सॉरी कहना नहीं सीखते, आई एम गिल्टी, मैं गलत थी। तो आपने लिए जुमला लिखे, अगर कभी आपका दिल गवाही देने लग जाए ना कि लगता है कि मैं ही गलत समझी थी, तो सबसे पहले तो खुद से कहिए, अपने आप को जरा सा समझाइए, डांटिए, गुस्सा कीजिए कि तुम बहुत जल्दबाज हो किसी को भी जज करने में। फिर उस बंदे से रब्ते में रहिए जिसके बारे में आपने गलत सोचा था, कम्युनिकेशन कर लीजिए। यकीन करिए सगे बहन भाई जितना मर्जी गुस्से में हो ना, सामने आ जाए तो दिल ठंडे हो जाते हैं, दिल ऐसे मोम के हो जाते हैं। इस तरह दोस्त, अहबा, इवन दुश्मन, इवन कोई बंदा मुखालिफ है, सामने जाकर उस पे खड़े हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हमें अपनी अना के खौल से निकल कर हकीकत पे ले आए। अल्लाह ताला इस तरह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है, और अक्सर लोगों को हमने वफाए अहद ना देखा, इसको हाईलाइट करिए, यानी अक्सर वादे पूरे नहीं होते, यानी वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, और हमने अक्सर लोगों को बेहुक्म ही पाया। अब इन सारे किस्सों का थोड़ा थोड़ा तذکرہ करने के बाद अब आगे आयत नंबर 103 से कई रुकू हजरत मूसा और फिरौन के बारे में, यानी इस सूरत में तवील तरीन किस्सा किस नबी का है, हजरत मूसा और फिरौन का। यहाँ समझ लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने मुख्तलिफ अदवार में जो मुख्तलिफ अम्बिया कराम को भेजा ना, तो हर एक के आगे डिफरेंट गोल था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो रोल हमें एज अ प्रॉफिट दिखता है ना, वो क्या है? सियासी लीडर। देखिए, अल्लाह ने हर नबी को रोल मॉडल बना दिया, तो गाइडलाइन अगर सियासत के नाम पे हो, यानी हुकूमत वक्त के खिलाफ कोई बात कहनी हो, जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना हो, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के किस्से को देख लो। और यहाँ सियासी बिगाड़ है। सियासी बिगाड़ क्या होता है कि जिनके पास अथॉरिटी होती है, डायरेक्ट वो हुक्मरान होते हैं, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो जो चाहे कानून बना ले, जो चाहे चीज हटा ले, जो चीज कर ले। तो ऐसे वक्त में हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुश्मन के सामने अल्लाह की बात को जुरत और हौसले के साथ कैसे बयान करना है, इसका किस्सा देखेंगे। सुम्मा बस नमीम बादी मूसा भी आयातिना इला फिरौन। फिर इसके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दलाल देकर फिरौन और उसके उमरा के पास भेजा। मगर इन लोगों ने इनका बिल्कुल हक अदा ना किया। सो देखिए इन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। और मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया कि ए फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर हूँ। जरा हाईलाइट कीजिए, फिरौन का दावा क्या था? अना रब्बुकुम उलाला। जवाब क्या दिया गया? रब्बुल आलमीन। क्योंकि जो वक्त के फिरायना होते हैं ना, उनको एक गुमान लग जाता है या उनका एक ख्याल होता है कि हम ही तो खुदा हैं। वो कहता था कि भला जब मैं बनी इसराइल को पाल पोस रहा हूँ, तो इनको किसी और को रब बनाने की क्या जरूरत है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा के जरिए इसके दिमाग का ये जो खुन्नस था ना, इसको निकाला कि तुम क्या समझते हो, अल्लाह के दिए हुए को रोक के उसमें से थोड़ा सा बंदों को दे के तुम उनके खुदा बन रहे हो। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की जुर्रत तो देखिए क्या कह रहे हैं। इन्नी रसूलुम बिरब्बिल आलमीन। अपने तारुफ में कोई लंबे चौड़े साबके लाख नहीं दिए, बल्कि क्या दिया? सीधा सा तारुफ। और यहाँ नोट कीजिए, अपने नामों से पहले और उनके बाद कोई लंबी चौड़ी कहानियां ना लगाया करें। अच्छा, कोई खुद लगाते हैं और कुछ ना को बेचारे लगाएं तो लोग लगा देते हैं, किबलाओ काबाओ फुलां और फुलां, और अंदर से बीच में एक नाम होता है, फिर उसके आगे फिर आगे कई लफ्ज होते हैं। बंदे को बंदा ही रहने दें। जब दूसरे लोग ऐसे सबके लाख के देने लग जाते हैं ना, तो दूसरे लोगों को भी कई जगह गलती लग जाती है। दीन की दावत देने वाले इंसान बन के रहें, मुआशरे में सुपर ह्यूमन ना लगें। लोगों को वो सिन प्रूफ, टेंशन प्रूफ, स्ट्रेस प्रूफ, गुनाह प्रूफ बन के जब दिखते हैं ना, तो दूसरे लोग एक तो उनकी शख्सियत परस्ती में पड़ जाते हैं, और दूसरी बात है क्या सोचते हैं, हम तो इतने नेक हो नहीं सकते, तो फिर इन्हीं का पल्लू पकड़ लो, और इन्हीं के पल्लू पकड़ने में सारी खराबियां आने लगती है। इसलिए ना तो उस्तादों की मुंह भर भर के तारीफें किया करें, ना मजहबी रहनुमाओं की करें। किसी की बात अच्छी लगे तो उसके लिए दुआ कर दें, लोगों को उससे जोड़ दें, लोगों को उसका रابطہ नंबर दे दीजिए, कभी हमें फायदा हुआ आप भी ले लें, और साथ ही साथ ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें फैज लेने वाला बनाए। दूसरों की तारीफें ढेरों कर देनी और अपने अमल में ज्यादा चेंज ना लानी, ये कुछ उस्तादों के साथ अच्छा मामला नहीं होता। तो अल्लाह ताला यहाँ यही बात बता रहे हैं कि बनी इसराइल के किस्से में कि इनको इस वक्त क्या मसला था कि फिरौन इनके सर पे था। अच्छा, जो पीछे वाली कहानी हमने देखी है ना कौमे शुएब की, उनका मसला माल था, राइट? अब माली बहरान का जब कोई कौम शिकार होती है तो क्या होता है, वो आपने देखा है। और अब सियासी बहरान है, क्या आज के दौर में भी ऐसी कोई चीजें हैं? आज आप उम्मत मुस्लिमा को देखिए, आपको हर तरह की मिसाल वर्ल्ड वाइड दिखेगी। पूरी दुनिया में आज कई जगह लोग सिर्फ माल की वजह से अपना दीन बेच रहे हैं, क्या ही सियासत के दाम पे बेच रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस पूरे पारे में हम सबको ये सबक दे दिया कि तुम दूसरों को इस तरह से गलत काम करता देखकर अपने आप को सही रखो, अल्लाह पे नजरे रखो। लेकिन आज खास तौर पे कोविड के बाद से एक ही सवाल है, माली बहरान, ले ऑफ हो गए, मुल्क बदर हो गए, जायदादें कम हो गई, कारोबार छोड़ के कई बाहर के मुल्कों के लोगों को अपने बैक होम्स में भेज दिया गया। अब क्या करें? अल्लाह पे नजरे लगाए। सब्र हर कामयाबी का सिरा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि किसी के ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा ना, तो अल्लाह ताला अदा कर देगा अगर कोई ये दुआ मांगेगा, अल्लाहुम्मा इक्फिनी बि हलालिका अन हरामिका वाग्निनी बि फदलिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह, मुझे अपने हलाल से किफायत दे हराम के मुकाबले में, और बाकी सारी चीजों से बेनियाज कर दे। अल्लाह ताला ऐसी कौमों की कहानियां लाकर आपको मुझे भी यही दावत देते हैं कि हम अपने आप को चेक करें। इन आयात पे अमल के नुक्ते नोट करते हैं। अगर मुआशरा अल्लाह के अजाब से बेखौफ हो जाए, तो उसे नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुसीबतें और तकलीफें आपके गुनाहों और कोताहियों का सबब होती हैं। अगर कभी किसी तकलीफ का शिकार हो, तो गुनाहों से तौबा करनी है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि अल्लाह की तरफ से दिल पर मोहर लग जाए, फिर कोई खैर और शर समझ ही नहीं आती। जिसको उर्दू में कहते हैं ना, मत मारी जाती है बंदे की, आज इंसानियत की मत मारी हुई है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। तो गौर व फिक्र की बात है, आपका ईमान कितना ही मजबूत हो, फिर भी कभी भी अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट ना रहिए, मुतमईन ना रहिए, और ऐसी आजमाइशों से डरें जो आपसे ईमान छीन लें। आपको तो हमारे ईमान और आजमाइशों का आपस में गहरा रब्ता है, जितना बड़ा ईमान उतनी बड़ी आजमाइश, और इसी तरह अपोजिट भी है। अल्लाह ताला लोगों का खैर और शर, अच्छी और बुरी दोनों हालतों के जरिए इम्तिहान लेता है। कभी आप पे अच्छे दिन होते हैं, ये भी इम्तिहान का पर्चा, कभी पेपर बड़ा आसान आता है, कभी बड़ा मुश्किल आता है। सेहत भी इम्तिहान है, आसान पेपर है, और बीमारी भी इम्तिहान है, जरा सा टफ हो जाता है। फिर नेक लोग नेकियां करके भी डरते हैं, जबकि गुनाहगार गुनाह करके भी बेखौफ रहते हैं और मुतमईन रहते हैं। और अक्सर क्या जुमला बोलते हैं, देखा जाएगा, और जो होगा देखा जाएगा, मौज कर लो, मस्ती कर लो, बाबर बैश कोश के जहां दोबारा नीस, और इस तरह की कहानियां पेश करते हैं लोग। फिर अगर जाहिरी अमाल दिल के ईमान और तकवा के साथ हों तो अल्लाह ताला बरकतों के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह ताला हमें हकीकी रुख के साथ नेकियां करने वाला बनाए। किस्सा आगे बढ़ता है, हकीकुन अला अकूल अल्लाह इल्लल हक। मेरे लिए यही शायाने शान है कि बजुस सच के अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब ना करूं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील भी लाया हूं, तो तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। फिरौन ने कहा, अगर आप कोई मौजजा लेकर आए हैं तो इसको आप पेश कीजिए। अगर आप सच्चे हैं, बस आपने अपना असर डाल दिया, बस अचानक वो साफ एक अजदहा बन गया और अपना हाथ बाहर निकाला, सो वो यकायक देखने वालों के रूबरू बहुत ही चमकता हुआ हो गया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दो मौजजे दिए, एक असा का साम बनना, या फिर बाद में कुछ और काम भी हुए असा से, दरियाओं में रास्ते बन गए। दूसरा यदे बैजा। मजे की बात ये कि यदे बैजा का जहां भी कुरान में जिक्र आया ना, सिर्फ फिरौन के दरबार में आया। उलमा का ख्याल है कि यदे बैजा बस एक वक्ती चीज होती थी जो फिरौन के सामने पेश हो रहा होता था तो उस वक्त, लेकिन असा जो था वो सांप बनना या पानी करना, ये एक मल्टीटास्किंग चीज थी। अब जरा से इन दोनों पे गौर कीजिए, एक मोजे में डर रहा है, सांप बन रहा है, और दूसरे में हाथ की चमक है। ये है अफरात और तफरीत से हटी हुई बैलेंस दावत। चूंकि आप इस बारे में फितरत और शरीयत का इम्तिजाज पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सुन के लोग बुराइयां छोड़ दें, और जिसकी भी मैं बात करूँ ना सोच रहे, तो वो अपने घर वालों को सोच लिया करें, क्योंकि हम में से कोई प्रोफेशनल दाई तो शायद है ही नहीं। अपने घर वालों से परेशान मर खाइफ रहते हैं कि बच्चे नहीं सुनते, बहुएं नहीं मानती, या जो सोन जिसको मर्जी कह लें। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे, आपकी बहुएं, आपकी बेटियां आपकी बात माने, तो उम्मीद और खौफ के बीच में रखिए। अल ईमानु बैनल खौफी व रिजा। कभी यदे बैजा वाली कोई खूबी भी दिखा दें, कोई खुशी की बात बता दें, कोई इनको जन्नत की रग़बत दिला दें, और कभी कभी फिर असा वाली भी कहानी दिखा दें। आज जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो उसके बाद फिर लोग हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते। कभी आप अकेले में बैठकर सोचें, लोग आपके साथ खुश रहते हैं? डॉक्टर का गोल कह के मरीज ठीक हो जाए, टीका लगाना तो मकसद नहीं है ना, कड़वी गोली खिलाना तो मकसद नहीं। हम कभी कभी अपने जोश में, बड़े हुए जज्बा ईमानी और दावत के शौक में, सारी गोलियां, कैप्सूल, टीके, इंजेक्शन खिला खलू के आ जाते हैं। मरीज बेचारा फौत हो चुका होता है, अंदर से वो कहता है मैंने मानना तो है पर इनके कहने पे नहीं मानना, क्योंकि ये बहुत ही बेइज्जती करती हैं। मेरी मॉम का अंदाज बड़ा बुरा है, मेरी मॉम जो वो टोंट बड़ी करती हैं। मॉम किस लिए बात कर रही हूँ, क्या औरतें बैठी हैं? मैं बापों को क्या जानूँ या मर्दों का मर्द जाने, हमें तो अपनी फिक्रें हैं ना। मर्द अपनी बीवी की बात सुनकर चिढ़ जाते हैं, कहते तुमने कह दिया अब मैंने नहीं करना। तो अल्लाह से दुआ भी करें, अल्लाह कौलम बलीगा दे, असर वाली बात दे, और तरीके भी सिखाए। टीका लगाना है जल्दी करो लगाओ, कैसे नर्स हाथ में पकड़कर आराम से बाजू को सहला के बातों में लगा कर इंजेक्शन लगा देती है, बच्चा एक चीख मारता फिर चुप हो जाता है। तो दावत इल्लाह का काम भी असल में डॉक्टरी का काम है। फिर कौमे फिरौन में जो सरदार लोग थे उन्होंने कहा, वाकई ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी सरजमीन से बाहर कर दे, सो तुम लोग क्या मशवरा देते हो? देखिए कान भरने वाले दरबारी, चार टके के लोग कह लीजिए, और आमतौर पे जो डिक्टेटर्स होते हैं उनके इर्द गिर्द ऐसे ही खुशामदी होते हैं। उन्होंने कहा, आप इनको और इनके भाई को मोहलत दीजिए और शहरों में हर कारों को भेज दीजिए, यानी ऐलान करने वाले, कि वो सब माहिर जादूगरों को आपके पास लाकर हाजिर कर दें। और वो जादूगर फिरौन के पास हाजिर हुए और कहने लगे, अगर हम गालिब आ गए तो हमको कोई बड़ा सिला मिलेगा। यहाँ से किरदार देखिए, थर्ड क्लास, लालची, ओदों के हरीस, जादूगर और कुफर भी। यानी इस्लाम आने से पहले जादूगरों की पर्सनैलिटी कुछ और थी और बाद में कुछ और हो गई। ये है सच्चे ईमान के आने में और दूसरे ईमान के आने में फर्क। जब सच्चा ईमान आता है ना, तो अप्स एंड डाउन हो जाती है पर्सनैलिटी। फितरत जो है ना, सबकी एक जैसी है। अगर आप शरीयत को ऐसे खूबसूरत तरीके से लोगों के सामने रखें कि उनकी फितरत अंदर से जाग उठे, वो पुकारे। हाँ बात तो सच है। और अक्सर एक जुमला बोल देती हूँ आज भी आपके लिए सही, कि लोगों की अना को नहीं उनके जमीर को जगाइए, क्योंकि जमीर सोया हुआ शेर है, जब जाग जाता है तो फिर गुर रहता है। अना को जगाने के साथ तो आप लोगों को खामखाई अपने खिलाफ और खुद उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, कोई बड़ा सिला मिलेगा? फिरौन ने कहा हाँ, और तुम मुकर्रब लोगों में दाखिल हो जाओगे, यानी फिरौन ने कहा तुम मेरे बहुत सेक्रेटरी हो जाओगे, सीक्रेटरी हो जाओगे, तो मैं वजीर बना लूंगा, मशीर बना लूंगा, यानी लालच दे रहा है। और याद रखिएगा कि ये लालच जिनको दिया जाता है वो ज्यादा दिन साथ नहीं रहते। कालू या मूसा इमान तुल्किया व इमान नकून नहनुलमुल्किन। अब मुकाबला शुरू होता है। इन साहिरों ने अर्ज किया कि मूसा ख्वा आप डालिए या हम ही डालें, यानी हु विल स्टार्ट फर्स्ट, कौन करेगा स्टार्ट, कौन करेगा इसको, कौन शुरू करेगा इसको। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ही डालो। कॉन्फिडेंस देखिए, मैं पहले खेल लूँ या मैं बाद में खेल लूँ, जीतना मैं नहीं है। हमारे अमूमन कहते पहले मैं सुना लूँ, पहले अगर अम्मा की बात सुन ली मियाँ ने तो वो उनके हाथों पे चढ़ जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं ना पहले बात जो सुनाता है वो सच्चा साबित होता है, गलत के गलत है। पहले वाला तो अपना जो जोर लगाना होता है लगा चुका था, बाद वाला जो बात कहता है ना वो ज्यादा अच्छी होती है। बहरहाल हक को ना पहले की जरूरत है ना बाद की जरूरत है। मूसा ने कहा तुम कर लो पहला, आई डोंट माइंड, यानी बड़ा केयरलेस सा मामला, इस ओके। इससे लग रहा है कि दाई दीन को प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, किसी बोझ में नहीं आना चाहिए। बस जब उन्होंने डाला तो लोगों की नजरबंदी कर दी और इन पर हेबत गालिब कर दी और एक तरह का बड़ा जादू दिखाया। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा डाल दीजिए। बस असा का डालना था कि इसने इनके सारे बने बनाए खेल को निगलना शुरू कर दिया। बस हक जाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बनाया था सब जाता रहा। बस वो लोग इस मौके पर हार कर खूब जलील होकर फिरे, और जो साहिर थे सजदे में गिर गए और कहने लगे हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, जो मूसा और हारून का भी रब है। फिरौन कहने लगा कि तुम मूसा पर ईमान लाए हो बगैर इसके कि मैं तुमको इजाजत दूं। देखिए जरा डिक्टेटरशिप, यानी लोगों को ईमान लाने से पहले भी मुझसे इजाजत लेने की जरूरत है। बेशक ये साजिश थी जिन पर तुम्हारा अमल दरामद हो रहा है, ये भी नोट कीजिए, अपने ही साथियों पे बदगुमानी, ताकि तुम सब इस शहर से यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल दो। बस अब तुमको हकीकत मालूम हो जाती है, थ्रेटनिंग दे रहा है। मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काटूंगा, फिर तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। धमकियां। उन्होंने जवाब दिया हम मरकर अपने मालिक ही के पास जाएंगे। ये है एक यू टर्न, उनकी जिंदगियों में एक चेंज आ गया। और कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन कहने के बाद जब बंदा दूसरों की बातों के बाद ये कहने लगे इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, तो समझ लीजिए कि सच्चा ईमान आ गया और अब जुबान खुल रही है। देखिए अभी तक जादूगर उसके अंडर थे, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, वमा तन्की मुमिन्ना इल्ला अन आमन्ना भी आयाति रब्बिना, और तूने हम में कौन सा ऐब देखा है बजुज इसके कि हम अपने रब के अहकाम पर ईमान लाए। जब वो हमारे पास आए ए हमारे रब हमारे ऊपर सब्र का फैजान फरमा और हमारी जान हालत इस्लाम पर ला। ये हाईलाइट कर लीजिए, हमारी जान हालत इस्लाम पर निकाल। रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रम व तवफ़ना मुस्लिमीन। सवाल लिखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का ये सारा मामला क्या सिर्फ जादूगरों ने देखा था? नहीं, बनी इसराइल भी तो देख रहे थे, तो उन पे तो कोई असर नहीं हुआ, जादूगरों पे क्यों हुआ? देखिए बनी इसराइली पैदाइशी मुसलमान थे जैसे हम हैं, और जादूगर रिवर्ट्स थे, न्यू मुस्लिम थे। और नया नया ईमान बड़ा खूबसूरत होता है, जब बंदे के अंदर नया नया ईमान आता है ना तो बड़े बड़े फैसले ले लेता है। जैसे नदी नालों में से पानी के बड़े बड़े परनाले निकलते हैं ना, तो रास्ते के पत्थरों को भी चीर कर आगे निकल जाते हैं। वो लोग जो कल तक बहुत कमजोर थे, और यार जरा सा ये भी समझ लीजिएगा उस दौर के जो जादूगर और आजकल के जादूगरों में फर्क है। आजकल जादूगर का लफ्ज कोई बहुत बाइज्जत नहीं है, लोग उसको पसंद नहीं करते। मेरे जहनों में भी अक्सर ही गंदे बंदे लोग आ रहे होते हैं ना, उस दौर में जादूगरों की बड़ी इज्जत थी, इलीट थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज के दौर में कुछ लोग हैं जो बड़े नाम है, इन्फ्लुएंशियल लिख लीजिए, बड़े असर अंदाज होते थे लोगों पर। कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ किरदार हैं, कुछ अदाकार गुलकार, आप जरा सोचिए अगर उनमें से कोई मुसलमान हो जाए तो कितनी तब्दीली लाए। बिल्कुल इस तरह से उस किस्म की चीजें थी, और वो जब बदले तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल दूसरी तरफ कर दिया। और अकीदे का किरदार पर बहुत गहरा असर होता है। जो के बनी इसराइल शुरू से दीन 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 की रट लगाए रखे थे, उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हमारा भी यही हाल है, कुरान सुनकर हमें कोई नहीं रोना आता। और कोई रिवर्ट सिस्टर अगर आपके साथ नमाज पढ़ रही है तो वो रो रही होगी, या तो इसलिए रो रही होगी कि समझ आ रहा है, या इसलिए रो रही होगी कि समझ क्यों नहीं आ रहा। और हम पत्थर के पत्थर बैठे गिन रहे होते हैं कब तरावी खत्म हो, कब पारा खत्म हो जाए, जान छूटे, अब बस ये और क्या करें, सवाब भी तो लेना था ना। याद रखिए, हमें अपने सोए हुए ईमान को जिंदा करने की जरूरत है। जब तक आपके मेरे अंदर ईमान के सोते नहीं फूटेंगे, खैर कहाँ से आएगी। और इसी तरह से अब कौम के साथ जो उनकी कहानी है वो क्या है, आयत नंबर 127। वकाल मलाउ मिन कौम फिरऔन, और कौम फिरौन के सरदारों ने कहा कि क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को यूं ही रहने देंगे कि वो मुल्क में फसाद करते फिरें और आपको और आपके माबूदों को तरक किए रखें। फिरौन ने कहा, हम अभी इनके बेटों को कत्ल करना शुरू कर देंगे और इनकी औरतों को जिंदा रहने देंगे, और हमको इन पर हर तरह का जोर है। यहाँ भी आपको कुछ बातें अमल के दिख रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अल्लाह ताला का सहारा हासिल करो और सब्र करो। इसको हाईलाइट कीजिए, ये है एक लीडरशिप क्वालिटी। काला मूसा लिकौमिही इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, क्या ये जमीन अल्लाह ताला की है, अपने बंदों में से जिसको चाहे वो मालिक बना दे, और आखिर कामयाबी इन्हीं की होती है जो अल्लाह ताला से डरते हैं। कौम के लोग कहने लगे, हम तो हमेशा ही मुसीबत में रहे, आपकी तशरीफ आवरी से कबल भी और आपकी तशरीफ आवरी के बाद भी। ये क्या अंदाज है, शिकायती अंदाज। लिखे हम एक लफ्ज पढ़ेंगे सूरह यूसुफ में, फसबरुन जमील, सब्र जमील, ला शिकवा तफीहा, ऐसा सब्र जिसमें शिकवा शिकायत नहीं होता, रदी तो बिल्लाही रब्बा होता है। एक होता है सब्र कबीह, बुरा सब्र, ये बनी इसराइल ने किया, जिसमें शिकवे भी, शिकायतें भी, ताने भी, इल्जाम भी। कुछ किरदार ऐसे ही होते हैं, खा भी रहे हैं, बुड़बुड़ भी कर रहे हैं, साथ भी रह रहे हैं तो झगड़े भी कर रहे हैं, बड़बड़ फिर कहते हैं मैं क्या करूं, और ये कर लूं, वो कर लूं, ये नहीं तो वो है। तो बनी इसराइल जलते कुड़ते रहते थे। आज भी बच्चों में एक बच्चा होता है थोड़ी सी चीज पे खुश हो जाता है, माँ कुछ भी दिला दे खुश होता है, और दूसरा अपनी पसंद का खिलौना चीज लेके भी खुश नहीं आता, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं रोते भांडे। कुछ बच्चों ने रोना ही होता है, इसी तरह कुछ इंसान भी रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए ऐसे रोने वालों को क्या कह रहे हैं।
मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को हलाक करेगा और बजाय इनके तुमको इस जमीन का खलीफा बना देगा, फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा।
वयस्तखलिफकुम फिल अर्दी फयंजुर कैफ तअमलून, जरा ठहर जाओ, वक्त का पहिया घूमेगा, तुम्हें भी पता लग जाएगा कि जब तुम पे वक्त आएगा तो तुम क्या करते हो। देखिए बेटियां अपनी माओ पे बड़ी तनकीद करती हैं, आपको घर नहीं चलाना आता, कल जब 10-20 साल बाद वो खुद माँ बनती है उसको लग बता जाता है। आज की बहू को सास की बात बुरी लगती है, अल्लाह कहते 10-15 साल गुजरेंगे, जब तुम सास बनोगी तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। तो लिखिए सब्र से कामयाबी मिलती है, लेकिन कुछ लोग सब्र में से 100/100 लेते हैं, 100 out of 100 नंबर। बनी इसराइल ने 100 में से 33% लिए, पास तो हो गए लेकिन बुड़बड़ाता हुआ सब्र था। अपने आप से पूछिए, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ, मैं अपने घर वालों से मुतमईन हूँ, अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया तो क्या मैं अल्लाह से नाराज हूँ। तो फिर आप 33% के सब्र पे हैं, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना ज्यादा अल्लाह ताला के साथ आप अपना ताल्लुक बढ़ाते जाएंगे, अल्लाह आपका ईमान बढ़ाएगा। और याद रखिए कि ईमान गूंगा बहरा नहीं होता, ईमान के अंदर एक हरकत होती है, बड़ी बड़ी रुकावटें दूर हो जाती हैं, रास्ते की चट्टाने दूर हो जाती हैं। बनी इसराइल और फिरौन और जादूगरों के सारे किस्से से आपको मुझे भी यही बातें समझ आ रही हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम का ये कहना कि वक्त आने पे तुम्हारा इम्तिहान होगा, तुम्हें पता लग जाएगा, अब उसका वक्त आ गया। आयत 130 देखिए, वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन, यहाँ 9 इन पे जो अजाब आए थे ना उनकी लिस्ट है, जरा सा अकाउंट करते जाएंगे तो आपको इसमें मुख्तलिफ अदवार की मुख्तलिफ चीजें दिखेंगी। और हमने फिरौन वालों को मुबतला किया कहत साली में और फलों की कम पैदावारी में, ताकि वो नसीहत कबूल करें, यानी अल्लाह सुबहान तआला ने मुख्तलिफ तरह से इनको जो चीजें दी थी उनको आजमाइश बना दिया। इतनी आयतों पर तदब्बुर और अमल करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि वो आपको अपना फरमाबरदार बनाए रखे और हक पर कायम रखे। देखिए आज हक पे हैं, शुक्र कीजिए, पता नहीं कल क्या होगा। जादू की हकीकत और इसके नुकसानात और इसके बातिल होने का इल्म लेना है और दूसरों को बताइए। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, अब्दुल्ला बिन बास की थी, उन्होंने लिखी थी, वो हमने पढ़ी पढ़ाई, हमारे वेबसाइट पे और यूट्यूब चैनल सब पे है, दम जरिया इलाज। उसमें सब जादू टोने के इलाज भी हैं, वज़ाइफ भी है, नजरे बद, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों का उसमें जिक्र है। अगर किसी को अपने या किसी अपने प्यारे के बारे में कोई डाउट हो तो आप उस किताब से फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर इसी तरह बार बार ये दुआ मांगते रहिए, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रम व तवफ़ना मुस्लिमीन, क्योंकि इसकी वजह से अल्लाह ताला आपको दीन पर कायम भी रखेगा और सब्र की दौलत से मालामाल कर देगा। कुरान पाक से रहनुमाई, हक एक दिन वाज़े होकर रहेगा चाहे झूठ कितना ही फैल जाए और लोग इसके धोखे में आ जाएं, याद रखिएगा। कभी कभी झाग की तरह हर तरफ बातिल बातिल बातिल, प्रोपेगंडा प्रोपेगंडा, ये खराब वो खराब, ये हो गया, कोई ना घबराए, आराम से बैठिए, ठंडे होके बैठिए, हक थोड़ी देर बाद निथर के आता है। साबुन या सरफ पानी में डालते हैं ना तो झाग बनती है, लेकिन एक जरा सा मजबूत हाथ ऊपर से डालें सारी झाग उतर जाती। तो मुखालफतों से, प्रोपेगंडों से, मुखालिफों की मुखालफत से मत घबराया करें, ये चेक किया करें कि आप हक पे है कि नहीं। ये ज्यादा बड़ा फिक्र होना चाहिए कि अल्लाह की नजरों में आप झूठे तो नहीं, दूसरे आपको झूठा के, सच्चा के, अच्छा के, बुरा के, सब एक ही चीज है, क्योंकि लोग कुछ नहीं है। हाकिम का झूठ बोलना मुआशरे के लिए सबसे खतरनाक झूठ है। आज हमारे हर वोट लेने देने के दिनों में कितने झूठ बोले जाते हैं, और बाद में सारों की सफाइयाँ सफाइयाँ पेश करने वाले नहीं नजर आते, कहाँ गायब हो जाते हैं ये अल्लाह जानता है। बुरे मशीर हुकूमत और अवाम के लिए मुसीबत है, यानी फिरौन के झूठे या बुरे चमचागीरों ने उसको बड़े बुरे बुरे मशवरे दिए थे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे इर्द गिर्द वो लोग हों जो अल्लाह से डरने वाले और समझदार हों। ये जो शूरा होती है ना, मशवरा देने वाले लोग, ये बहुत अक्लमंद और जीरक और फरासत वाले लोग होने चाहिए। फिर गौर व फिक्र की बातें, गुमराही की दावत देने वालों की पहचान दुनिया की हिर्स और चाहत है। उलमा सालेहीन के साथ अदब और लिहाज रखना ईमान लाने की वजह से बनता है। बड़ी आजमाइश के लिए बड़ा सब्र, छोटी आजमाइश के लिए छोटा सब्र। सख्ती और तंगी दिलों को नरम करती है और अल्लाह के दामने रहमत में मौजूद नेमतों का शौक और चाहत पैदा करती है। अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे।